بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والحمد لله عاصم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين مثال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي كان النبي وآدم بين الماء وطين بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أرهب الله عنهم الرمس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبينا الذين الله the gracious and merciful is sent him and his younger brothers and sisters of difficulty understanding your language. Last year also I recited the same ayat in order to understand. Today we are gathered here to commemorate but outrage our anger what has happened 1925 April the separation of our holy sites in Jannat al-Baqi where five days of very important personalities historically have been demolished by the Nazi group, which are still existing, which are still cooperating with the Zionist regime, and still they are not only destroying the sites of Islam, still last 6 months before they have taken away one very important site in Mecca, and constantly they are doing it, and it shows they are not with the Islamic movement. We need to understand clearly, inshallah. What I am trying to, inshallah, at the end of my speech, draw a conclusion, the responsibility of all of us in these situations and what we have to do. First thing today is why we have to do this constantly and repeatedly. Every day we have to pray namaz and offer five times a day prayer and fast two rakat. La salata illa bi fatiha. This is all the five fiqh, four of our Ahlul Sunnah fiqh and our fiqh of Jafri is unanimous in this. When you offer the prayer, first two rakat, in the first two rakat you have to offer, you have to recite Surah Al-Hamd, which is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Why we have to say, and why constantly we have to repeat? Zikr was Qurullah zikran kathira. Quran says, remember Allah subhanahu wa ta'ala, remind yourself, not one time, a lot. The benefit of zikr we are discussing today, inshallah, I hope we have learned from the Holy Quran and from the Bible, sallallahu alayhi wa sallam. Every day we say, اهدنا الصراط المستقيم, وَاللَّهُ guide us towards the right path. Then immediately you say, path of those upon whom you bestowed favors, not path of those who have gone astray and those who have been misled and on whom the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala has fallen. This repetition has its own philosophy. Dhikr has its own philosophy. The meaning of dhikr is, once we remember Allah subhanahu wa ta'ala, we have ahadith, not only one, many, many ahadith, even the philosophy of Quran. When you remember Allah subhanahu wa ta'ala, that means you are being away from the wrongdoings. Otherwise, only by saying Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, name of Allah, is at the same time doing mistake, that means that zikr is not affecting us. To give an example for all of our youth, is a lesser example, when you drive a car, once you reach to stop light, red light tells you within seconds you have to brake yourself. So there is a coordination and coherence between your senses and also your action. Once you see the red light, immediately you brake yourself. So likewise, when you see the haram, you break yourself. That is the meaning of zikrullah. So that means whenever we see non-Islamic activities is going on, it is wajib upon us to remember Allah subhanahu wa ta'ala and be away from that wrong. If some people are sitting together, gossiping of other women, and that is the place of ghibah, Quran says, لا تغتر بعضكم بعضا أيحب أهلكم أن تأكل لحم أخي ميتاً. Do you like to eat flesh of your own brother? That is not the place of sitting you. You are either you have to reject that idea of gossiping of other brothers. Who is saying? The one who is always remembers Allah subhanahu wa ta'ala in his zikr. That's why Ma'asum says, the hadith famous as we say three times after the salat, لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Why we say? We have a hadith. If you say one time, لا إله إلا الله, مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُخْلِصًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. If one time you say لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, Jannah is wajib upon you. فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْإِخْلَاصِ. Someone asked the Prophet of Allah, what is ikhlas? What is your saying sincerity? Prophet says, أَنْ يَحْجُزَهُ عَنِ الْمَعَاسِ. Ikhlas means when guna comes, when sin comes, you are away from sin. That is the meaning of life. It is not only saying La ilaha illallah. Tawbah karte hain, barba peete hain, ye bhi jari hai, wo bhi jari hai. That is not La ilaha, that is not La ilaha illallah. La ilaha illallah, we pray namaz, we do everything, you know. Every day we have to remove from our system the wrongdoing. That is the first step. The second step, basirat. Basirat meaning insight. Quran says, it's a beautiful Quranic ayat. I hope all of us, we give you the time to read this great book and not to be among those people who have been complained by the Prophet, Ya Rabbi inna qawmi ittakadu hadha al-Qur'ana mahajura. Oh Allah, my followers, they put this Quran aside. So every day you read Quran. Inna alladheena ittaqu, those who are muttaqi, those who are careful about the duties of Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ. Whenever an insight of shaitan comes, تَذَكَّرُوا. At that time, when shaitanic wasawis, shaitanic whispers come, بسم الله الرحمن الرحيم, قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس. The one is all the time is behind us and all the time, who is misleading us all the time, is asking us to go away from Allah subhanahu wa ta'ala. At that time, tadakkaroon, they remember Allah subhanahu wa ta'ala. Once the whisper of shaitan comes, tadakkaroon. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. not only they remember as if they see Allah subhanahu wa ta'ala in front of them. So that means the zikr has to make us to accept the basira, the insight of our knowledge should give us so much insight. Once we have the sins, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. This is the second step. First step, remembering Allah subhanahu wa ta'ala all the time. Fadhkurullah. You all the time remember Allah subhanahu wa ta'ala. Aqimus salat. Establish prayer. Okay, five times we are establishing prayer. Is it enough? Allah says, no. If you are a mu'min, ahadith says, if you are a mu'min, try to do nawafil also. Someone asked, Ma'atumi alayhi wa sallam, it's the famous thing. It is the problem of all of us. I am also, if you don't worry about it. So whenever we start namaz, salat, our minds are not there. Always we are calculating, we are in trouble, and we are maybe grocery list is being done. Many things we go. Our mind goes off from the... Someone asked Ma'atum, what we should do for this problem? Imam says, two remedies for such kind of problem. Number one, to increase nawafil. That's why we have 17 rakat wajib prayer and 34 rakat nawafil to subsidize, to balance it out, because we do so many mistakes in wajibat. To get out of that problem, you do remedy. And second thing, Imam says, Masum says, to do sajidayat shukr. When you know that you are not, at the time of prayer, you are not thinking about Allah subhanahu wa ta'ala, so increase sajdaya shukr, that also a remedy for the salat which you are supposed to do all the time, in the ikhlas, you are not doing. So this meaning of zikr is all the time you have to remember, every now and then, every 2 hours, you have to ehdana salat al-mustaqeen, salat al-ladina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wal-dhalin. Repeat it. To extend what has to happen, so you remember Allah subhanahu wa ta'ala and be away from him. Salat for Imam al-Bahra. The third benefit of remembering Allah subhanahu wa ta'ala is being away from nifaq. Inna al-munafiqeen, Quran says, the description of munafiqeen, what was the hypocrite? There are so many descriptions. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Quran gives all the characteristics of a munafiq. In this ayah, إِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. When they attend the prayer, for the prayer, morning prayer, because mother has forced or maybe someone has forced, this is a... So you are doing so many kinds of things as if you are not interested in praying the namaz. So فَإِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ, when they pray now, offer the prayer, they are not into the salat. يُرَعُونَ, they are for the show-off, to show it to the other people. One of the description. One time they are not interested in salat, second time they are showing off to others. Then they say, مُذَبِّينَ بَيْنَ ذَلِكْ هَؤُلَاءِ لَا هَؤُلَاءِ. They are confused. They are right or they are right. America is right or... Salawat Padhi Muhammad Wala. مُذَبِّينَ. Who is their Lord? They don't know. They should apply to the ideology of Islam. They should apply to the ideology of the power. مُذَبِّينَ. So Quran says, مُنَافِقْ نِفَاقْ وَلَا دَسَائِنْ. If you do dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, you go away from nifaq. Nifaq also two kinds of nifaq. One is hidden, another is external. Hidden nifaq, all of us, I do have, all of us we do have. But we have to get to Allah subhanahu wa ta'ala, we should remove each and every time and go away from that hidden nifaq. The open nifaq is openly denying the reality of Islam, only believing in Allah subhanahu wa ta'ala, and إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. صلوات الله عليه وسلم. The fourth thing which happens for a person who does a dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala is beautiful. That is a particular benefit Allah gives to a person who is sincere in doing remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. That is,
الصلاة بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله.
Those who are believers,
their hearts are mutmain, in peace and tranquility.
You could see from their face there is a peace.
And you could see they are peace. Nothing has happened to them. They are always smiling. Even though they are in big trouble with themselves inside because of the problem of Umar.
And when you see the history of the problem of Umar,
he had many, many problems. But once he used to come out, always he was smiling. So, Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. The benefit of dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, all of us complain, Mawlana, about tension.
Now there is a lot of tension, so now it is also the problem is going day by day worse,
and the global recession is coming. It is inshallah, the time is coming, Iman is also coming, we have to get ready for that. And at the same time, a mu'min is not shaken by the atmosphere of the world. They are mutma'in, they are peace and tranquil. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. If you remember really, Allah subhanahu wa ta'ala, your hearts are at ease, you are at peace, nothing can. Those doctors who were close to Imam Khomeini before his death or during his illness, they say when they used to monitor his heart, and the bombs were coming from the November of 8 years of war from Iraq in Tehran, we never see his heart has changed any ground because of the problem which is happening to him or the surrounding. That shows Allah bi dhikrillah tatma'innul qulub. It is a reality, it's not only a fiction. You and me can attain that provided we are mukhlasin. Salawat alayhi Muhammad. पांचवी चीज जिसको बयान करने के लिए मैं सहमत दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ से मेरी शुरू हो रही जो आज से रिलेटेड चीज है वो है इन एकाउंट जिक्र क्यों करें भाई अब है मेरे मालिक की नहीं मेरे साथ रोजाना नमाज क्यों पढ़े हमारे बच्चे पूछते हैं पांच वक्ति क्यों नमाज मौलाना एक ही वस्तु में सफर वगैरह क्यों नहीं कहेंगे आपके लगा मन कहते खुद आपके शाम तक मजे में रहो जैसे क्रिश्चियनिटी में संडे एक दिन चले गए पूरे सात हफ्ते के दिन छुट्टी तो आप ये क्यों ये हर दो चार घंटे में कहते हैं कि आओ पढ़ो मेरे पास बोला और तुम कैसा है उसकी वजह यह है कि इंसान में एक सलाहियत है जो किसी मखलूक में मौजूद नहीं है सारे परवरदिगार ने जितनी कायनात की चीजें बनाई हैं उनमें इंसान में जो सलाहियत दी है किसी ने नहीं दी है वो सलाहियत क्या है वो सलाहियत है सिफात इलाहिया का इन्हिता यानी इंसान में ये सलाहियत है कि वो रिफ्लेक्ट कर सके सिफात इलाहिया को सिफात इलाहिया कितने हैं नन्यानवे सिफात है कुरान बता रहा है और आप लोग बुराए जोशन कबीर पढ़ते हैं जिसमें नन्यानवे को दस से जरूरत दिया गया है तकरीबन 1000 के करीब सिफात हैं इन सिफात को आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अलबत्ता ये है कि अहले बैत में हमने पास क्या है वो जमी है सिफात इलाहिया के मजहर है हम अगर एक के हो जाए तो हमारी जान तो नानान्य सिफात इलाहिया का अगर अली मौलाए कायनात को देखना हो तो कॉन्ट्रडिक्शन मौलाए कायनात में जमा है कैसे कॉन्ट्रडिक्शन जमा है जब खाने का बैठता है तो सूखी रोटी खाता है ऐसी के लोग लुकमा भी नहीं ले सकते और चबा भी नहीं सकते ये आगे हम नहीं खा सकते लेकिन जब वक्त आता है तो खैबर के दर को दो तो ये अब अगर एनर्जी का अगर हिसाब करेंगे आप उस घंटे का हिसाब करेंगे तो आपको कहीं भी कुछ भी कहता है कि खला तो बाबा कैबरिन लाओ बेवत इंसानिया बल बेवत रब्बानिया मैंने खैबर के दरवाजे को इंसानी कुवत से नहीं उखाड़ा है रब्बानी कुवत से ये सिफात इलाहिया का मजहर है जमात परवरदिगार का मजहर है इंसान ने खुदा ने सलाहियत दी है कि वो जिक्र परवरदिगार करते करते इन सिफात को मजहर कर सकता है वो रिफ्लेक्ट कर सकता है और आईने मासूमी हुआ है अगर इनके सिफात को देखे हालात के एतबार से उन्होंने मजहरियत को बताया है सरकार ने इजहार बताया है सिफात इलाहिया का इजहार किस तरह से होना चाहिए समाधियत इलाहिया को किस तरह से इजहार होना चाहिए रहीमियत परवरदिगार का किस तरह से इजहार होना चाहिए چاہیے شہزادی نے عصمت پروردگار کو، علی نے سولت حیدریہ کو، امام حسن حلم حسنیہ کو دیکھیے، حسین کی شجاعت کو دیکھیے، سجدہ سید سجاد کی عبادت کو دیکھیے، محمد باقر کے علم کو دیکھیے، جعفر صادق کی صداقت کو دیکھیے، موسی قاضی کا عزم غیظ کو دیکھیے، اور علی الرضا کی رضا کو دیکھیے، جود تقی کو دیکھیے، اور نقاوت نقی کو دیکھیے، حیبت عسکری کو دیکھیے، غیبت الہیہ کو دیکھیے. سوال مگر اس سے بہتر سب بات پڑے ہم اب آئیے ترجمہ پڑھیں ہم لوگ پر. بعض بات ہم لوگ چیزوں کو بہت جب کبھی ریپیٹیشن ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے آؤٹ آف ٹریک چلے جاتے ہیں. میرا سر بہت اچھی مثال دیتا ہے، یہ کہتے ہیں یہ گھڑی کو صاف کر رہا تھا ایک شخص، صاف کر کے ختم کیا، مجھے کیا ٹائم ہے اسے دے دیں. ارے ابھی صاف کیا تھا تم نے کیا ٹائم پوچھا تو پھر کیوں دے گا آپ نے؟ صاف کر رہا تھا وہ سب دیکھنے کی نیت نہیں، جب صاف کر رہا تھا وہ ٹائم دیکھنے کی نیت بول کر بھی نہیں تھا، پھر آپ نے اس کے فوراً سیکنڈ بعد آپ نے ٹائم پوچھا پھر دے گا آپ نے دیکھ کر کے بتایا. تو انسان روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، مگر کیا ہے ایسے نہ سنا تو مستقل ذرا سمجھا دیجیے کیا ہے. سوال کرنا، جب شہید مطہری نے کتاب لکھی، بہترین خوبصورت کتاب ہے داستان راستان، داستان راستان کے معنی ہے اسٹوری، سچوں کی کہانی ہے. اردو میں ٹرانسلیشن ہو گیا شریفی منام سے ٹرانسلیشن ہو چکا. شہید مطہری انسائکلوپیڈیا آف اسلام کہا جاتا تھا، علوم کے سمندر تھے، اور آج بھی استاد شہید مطہری اگر وہ ہوتے تو نظر میں کوئی دقت نہیں کر سکتا، ان کے مقابلے میں سمندر تھے. وہ شخص داستان داستان لکھتا تھا، ان کے کالج ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ جیسا عالم یہ ہے، یہ داستان داستان جنہیں آپ کے اسٹارڈ کے دوا سے کہانیوں میں نہیں جانا چاہیے تھا. شہید مطہری نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو اس کتاب کے ذریعے سے یہ ہے کہ میرے بچے ہی کو صحیح ہدایت ہو جائے، اس کے بعد وہ قصے جو ہیں قرآن خود بیان کرتا ہے. تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی کتاب چاندنی مال محسوس پڑھتا ہے، نہیں ہے تو پھر لے لیجیے، وہ ترجمہ اور نماز کا چھپوا کے دیا. ایک صاحب نے کہا کہ مولانا یہ آپ اور یہ کتاب نماز کے معنی 136 الفاظ کے میننگ، کیا بڑا کام کر دیا آپ نے. نہیں کام بڑا کام نہیں کیا، آپ دعا پڑھتے رب بنا کے نہ پھر دنیا ہسنا ہو تو پھر لاش کر کے ہسنا. اب آپ سے پوچھتا ہوں واقعہ کے ترجمہ کر دیجیے، صرف آپ ہی بتا دیجیے واقعہ واؤ آپ واقعہ کا ترجمہ کر دیجیے. جب کتنے بتاؤ پڑا آپ نے سر کو جانے لگے، میں نے کہا کبھی ایسے مت کیجیے کہ عبادت کرنے سے کثرت سے یہ سلوار پہلی کوشش یہ ہم کریں آج اٹھے نماز کے معنوں کو سمجھیں، پوری نماز کے معنوں کو سمجھیں اور ریفلیکٹ کریں، عبادت میں مزہ بھی آئے گا، لطف بھی آئے گا. جتنی آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگیں گے آپ کو لطف بھی آئے گا. اب آئیے اہدنا صراط المستقیم، ریپیٹیشن ہے پروردگار صراط المستقیم کی ہدایت فرما. اب وہ قائم رکھ ہدایت فرما، اس میں چکر ہے اس میں مت کریے، ہدایت فرما بھی چاہیے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اس لیے کہ ہر مرتبہ بھٹک جانے کی امید ہے، ہر مرتبہ انسان کو نئی راہوں کی ضرورت ہے، ہر مرتبہ نیا پرابلم ہے، ہر مرتبہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار بولی اس مسئلے میں تو رہنمائی فرما، اور ایسی رہنمائی جیسے اہل بیت میں اس لیے صراط المستقیم نحن صراط المستقیم، امام آدمی کہتے ہیں کہ ہم صراط المستقیم ہیں. اہدنا صراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. فوراً کیا کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی. تو معلوم اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو بھی یاد کرنا ہے، اللہ کے ساتھ نعمتیں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا جن پر تیری نعمتیں نازل. اچھا یہ بھی ختم نہیں ہوا، اس کے بعد فوراً کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ دماغ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو مغضوب و ضالین ہے. مالک نماز پڑھ رہا ہوں تیری تبرہ کا تبرہ کیا چکر ہے یہاں پر، تیری عبادت میں صرف تیرا ہی نام ہونا چاہیے، یا کہنا ابو تو یا کہنا صحیح، کوئی اور تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. بہترین جواب قرآن میں دے رہا ہے کہ روزانہ ہر مسلمان کو نماز پڑھنا واجب ہے، اس نماز میں یہ کہنا واجب ہے کہ صاحبنا صراط المستقیم ہر سورے دوسرے سورے کا ٹکا ہو سکتا ہے, سورہ ارحام کر آپ نہیں کر سکتے. برادران اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی آیت کا ایک ٹکڑا کافی ہے سورہ ارحام کے بعد, ہمارے یہاں شرط ہے کہ پورا سورا پڑھیں. تو چنانچہ آپ مکے میں دیکھتے ہیں کہ امام نماز کا معاملہ بعض وقت فٹ کرتا ہے دو چار آیتوں کو یا دو بار آیتوں کو بیچ میں سے سورہ کی پڑھتا ہے, نماز ختم ہو جاتی ہے. مگر ہمارے پاس شرعت جعفریہ میں سورہ ارحام کے بعد پورا سورا پڑھنا واجب ہے فرائض میں سے. برادران اہل سنت کیا اس طرح سے نہیں ہے, مگر سورہ ارحام برادران اہل سنت کیا بھی پورا پڑھنا ضروری ہے, ورنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چھوڑ دیتے. صلوات علی محمد وعلی محمد. برادران ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مدد چاہیں؟ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ, یہ لوگ بیچ میں آ گئے تو معلوم ہوا وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ آئیڈیا بھی چاہیے, کچھ رہنما بھی چاہیے. وہ رہنما کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے حیات رسالت میں بہترین نمونہ. اسی طرح اہل بیت سے نحن صراط المستقیم میں کہا کرتا ہوں, اگر صراط مستقیم دیکھنا ہے تو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. روز مباہلہ گھر سے لے کر میدان مباہلہ تک جو نقول بن گئے وہی صراط المستقیم. یہاں پر مجھے جو بحث کرنی ہے یہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. تو یہ لوگوں کی معرفت رکھنا ضروری ہے, تلاش کرنا ہے کہ وہ کون ہیں جن پر اللہ ہے اپنی نعمتیں. جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم خلاف کو باقی نہیں دے سکتے. اچھا, نہ صرف ان کی معرفت ہونا ہے بلکہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو مغضوب و ضالین ہیں ان کی بھی معرفت ہوگی. تو آپ ڈرائیو جب کرتے ہیں تو میں نے مثال پیش کی, پھر بھی یاد رکھیں آپ جب ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ گاڑی میں بیٹھ گئے, آئینے کو درست کر دیا, سامنے ایک آئینہ ہے اور دونوں بازو آئینے ہیں, حالانکہ سیدھے جانا ہے تو تین آئینوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یار, کہ سیدھے جب جانا ہے تو میں پیچھے کیوں دیکھوں, باہنے کیوں دیکھوں, بائیں کیوں دیکھوں. چلنا سیدھے اس وقت محفوظ جا سکتے ہو جب تینوں طرف دیکھو کہ کوئی تمہیں اٹیک, جب تک تینوں طرف سے نہیں بچو گے اس وقت تک تم سیدھے جا نہیں سکو گے. تمہیں رائٹ بھی دیکھنا ہے, لیفٹ بھی دیکھنا ہے اور پیچھے بھی دیکھنا ہے. اس لیے کہ شیطان رائٹ سے بھی آ رہا ہے, ممکن ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب آئیے صفات الہیہ کا ریفلیکشن کرنا ہے, صفات الہیہ کا انعکاس کرنا ہے. مقصد عبادت, مقصد دیکھو انعکاس ریفلیکشن, مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کتنی مرتبہ ریپیٹ ہو رہا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریپیٹ ہو, رحمان الرحیم, پھر رسول الحمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صفات میں نے صفات ہے مگر یہ دو صفاتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جس کا روٹ بڑھ رہا ہے. میں توجہ بتا رہی ہوں, کتنی مرتبہ؟ پانچ وقت کی نماز کا مطلب واجب ہے. چلیے نافلہ نماز پڑھیے, پانچ واجب ہے. فرض سورہ کا اپنی سورہ پڑھنا واجب ہے. تو اس کے معنی کہ دس مرتبہ سورہ الحمد کا ہر بالغ مسلمان پر پڑھنا واجب ہے. میرا ساتھ ہیں آپ لوگ؟ اور جس نے سورہ الحمد پڑھا گیا اسے پورا قرآن پڑھا. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے ان آخرنے کا سب من المثانی والقرآن العظیم. کہتا ہے حبیب ہم نے تجھ کو سبع مثانی دی, سبع کے معنی سات آیتیں, مثانی جس کو ہر سورہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے سبع مثانی. کی تفسیر یہ ہے کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوا, مکے میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں بھی نازل ہوا, اس کو کہتے ہیں مثانی. ایک مطلب نہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھنا واجب ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں مثانی. سبع مثانی و قرآن العظیم, قرآن نے سورہ الحمد کو قرآن کے مقابل میں لا کر کے پیش کیا ہے. یعنی پورا سورہ ایک طرف اور پورا قرآن ایک طرف. इसीलिए हम जब मरहूमिन के लिए फातिहा पढ़ते तो कौन सा सूरह पढ़ते हैं? सूरह अलहम। माने क्या हुए? अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वाला तालीम तक आपने पढ़ा तो पूरा कुरान पढ़ दिया मरहूम के लिए, ठीक है ना भाई। इसीलिए आपने सूरह अलहम पढ़ा तो रोजाना कितनी मरतबा पढ़ा? 10 मरतबा। तो हर मुसलमान का 10 मरतबा पढ़ना वाजिब है। इसके माने 10 कुरान पढ़ रहा है, रोजाना 10 मरतबा कुरान पढ़ा। 10 मरतबा ये सिफतें जो रहमान रहीम है रिपीट कर रहा है कितनी मरतबा? 40 मरतबा। रोजाना 40 मरतबा कह रहा है रहमान और रहीम। 20 मरतबा रहमान कर रहा है, 20 मरतबा रहीम। रूट वर्ड है रहम। 40 मरतबा क्यों? चीलत 40 चीलत क्यों? 40वां क्यों होता? एक अलग बहस है। 40 की इंशाल्लाह कभी कभी मौका मिला तो 40 पर भी एक महसूस होना चाहिए। एक इल्लत यह हो सकती है रहम मादर में बच्चा 40 हफ्ते रहता है। तो 40 के माने यह है कि कमाल इंसान अगर हासिल कर सकता है तो 40 के बाद ही हासिल कर सकता है। रोजाना रहमान और रहीम को याद करो 40 मरतबा, और वो रहमान और रहीम रखते हुए उस पर अगर रहम इनकार ना करे तो वो नमाज क्या है? यह है अगर वो रहमान और रहीम कह रहा है और उसमें रहम करम नहीं है, ना वो भी बच्चों के साथ रहम करता है ना वो करम करता है, जब भी जाता गुस्से की हालत में रहता है, हर मतलब बिपरा हुआ रहता है, तो नमाज पढ़ रहा है मगर इन एहकाम से रहमान और रहीम नहीं है। मुस्तकीम के माना क्या है? परवरदिगार तुझे तू हम भीख मांगते हैं कि तू हमारे सीधे रास्ते पर कायम रख। उसके बाद सिरात लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नेमतें नाजिल की। कुरान ने कहा है कि नबी अंबिया शहदा औलिया और सालेहीन पर खुदा ने नेमतें नाजिल की। चुनांचे किस शख्स को बताया है कुरान ने? मोहम्मद रसूलुल्लाह। आइए देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु मअय्यत मअय्यत अज़हाब अज़हाब कौन है? अल्लाह कुरान बता रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है मोहम्मद। वल्लज़ीना मअहु मअय्यत रसूल कौन है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जब कुफ्फार का मसला आता है वो शदीद है, बोलो सख्त है। जब मोमिन का मसला आता है रहमाउ बैनहुम, तराहुम रुकअन सुज्जदा, जब भी तुम देखते हो कि या रुकू में रहते हैं या सजदे में रहते हैं। यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह, और अगर कोई चीज तमन्ना नहीं रहते बल्कि इब्तिदा करते ढूंढते रहते हैं कि खुदा का फजल कहां मिलता है, उनका कोई और काम है। कुरान ने मोमिनीन जो रसूलुल्लाह के साथ है ये मां कहकर के बताया कि साथ होना सिफत के जरूरी नहीं है। 1400 साल बाद भी अगर ये सिफत है तो मैयत रसूल हासिल। सिफत क्या है? अजिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, जब काफिरों का मसला आ जाए तो वो परवाह न करे कि अमेरिका है या रशिया है या एक यूरोपियन कंट्री है, बल्कि यूएनओ के बीच में आकर के पहले बिस्मिल्लाह से शुरू करे, इमाम जमाना का नाम ले, नाम लेकर के दावत दे सारी इंसानियत को, इंसानियत की दावत दे करके और बातिल को सुनाए कि तुम्हारा ये टाइम आखिर है। इसका नाम है मालीमन। देखिए खुदा क्या खबीर, अलीमन खबीर है, बहुत ज्यादा जानता है। तो सिफत हमें मोमिनीन में आना चाहिए, बहुत होशियार रहना चाहिए। इत्तको मिनल मोमिनीन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, हाँ मोमिन से बहुत होशियार हो इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता है, तो खबीर होना चाहिए। तो हर मोमिन जो हम लकी के पकी नहीं होना चाहिए, आजकल बहुत होशियार रहिए। आजकल हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं, इकतसादी हालात तबाह हो रहे हैं, तो सब हमारे लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। और अच्छा माहौल है मोमिन को ईमान के जरिए से दुनिया को कैसे बचाया जाता है, सही माहौल है। तो अलीमुल खबीर के मजहर बनना है हमें, जहाँ अलीमुल खबीर के मजहर बनना है अलीमुल बिज़्ज़ालिमीन के भी मजहर बनना। खुदा क्या है? जालिमीन को अच्छी तरह जानता है, तो उसी तरह से मोमिन को भी जानना चाहिए कि जालिम क्या। जब तक कि हम ये नहीं जानेंगे हमारा ये एहतना सिरात अल मुस्तकीम के बाद सिरात अल लजीन अनाम का आएंगे गैर मगरूब अलैहिम वलद्दालीन चलने वाला नहीं है। 1925 में नजदियों ने जन्नतुल बकी पर जुल्म किया, बहुत लोग कहते हैं मगर मजलिस करने से क्या होगा, हमारे पास वैक्सीन तो बहुत है, बहुत वैक्सीन इंसान हर दौर में होता है, उसमें कोई बात नहीं। आइडिया का आना अलग बात नहीं है, मगर मेरा ही आइडिया सही है गलत है। फिक्र में इंसान के कई आइडिया आ सकते हैं, मेरे सामने भी आ सकते हैं, मैं भी बयान कर सकता हूँ, लेकिन आइडिया सही होना लाजिम नहीं है। इसीलिए कुरान क्या हुक्म देता है, वह शाबे रहूं फिर अमर, अपने आइडिया को दूसरे लोगों से मैच कर लो। अगर मैं जा रही अगर सही नहीं कह रहा तो आगे बढ़ो, वह शाबे रहूं फिर अमर। तो आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बात लोग कहते हैं वहां नहीं क्या हो जाता है सामने, मतलब मजलिस कर लिया रो लिया क्या हो, ये आंसू खुद जो है खामोश ऐसे जा रहे हैं। हर साल मुहर्रम में हम मस्जिद हुसैन क्यों करते हैं, 1400 साल से लेकर सिलसिला जारी है। अगर कुछ ना कर सके अपनी चार दीवारी में आंसू बढ़ाया, लेकिन ये आंसू इतने खतरनाक कि दुश्मन आज भी कहता कि रोते क्यों हैं, समझो ये आंसू नहीं है दुश्मन पर आज एक बार गर्व है, तो ये रोना बहुत अहम है, याद करना बहुत अहम है, लेकिन इसका आगे स्तर है वाली जालिम जालिम से बाखबर रहना। अभी आपको इतला मिली कि गुजशत हफ्ते तालिबान से अमेरिका और सऊदी गवर्नमेंट और ट्राइंगल भी देखिए, तालिबान अमेरिका सऊदी मोसाद मिले मुलाकात मिलने की जरूरत नहीं, इसमें इन्होंने भी चर्चा की है, सब बड़ा हंगामा बता रहे हैं कि ओहो ये लोग मुलाकात किए हैं, वो मिलने का कोई बात नहीं। मुझे किसी ने मैंने सोचा कि बनाना क्या चाहिए बात करना चाहिए, आखिरी वक्त हर बार उनसे बात करना, इसलिए घरों से आंसू नहीं मांगा उसने अमर अपने साथ से बात की, मीटिंग की इमाना हुसैन अरे बुला तो उसने रोज आंसू जंग करने से पहले बात करने में कोई इश्काल नहीं, लेकिन जो अब जो ट्राइंगल बन रहा है उसको समझना चाहिए। वो तालिबान जो कहते थे कि अमेरिकन जो भी अमेरिका के अंदर में उनसे हम बात करने के लिए तैयार नहीं है, और सबसे पहले जिसकी दुश्मनी थी वो सऊदी की दुश्मनी के लिए सामने बताया जाता था कि ये गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए, लेकिन अब सऊदी के साथ बैठ करके बात करने के माने क्या है, मैंने कई मरतबा मजलिस में पहले बताया है। देखिए जूनियर टीम से जूनियर टीम का झगड़ा होता है, और जो होता है मुकाबला जूनियर का जूनियर का सीनियर का सीनियर से, अब जो मुकाबला हो रहा है सबका सिंडिकेट बन रहा है, एक ही मुकाबला है वो हक का मुकाबला है बाकी। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल उनके लिए नहीं है, इसलिए कि देख रहे हैं कि मिडल ऑफ जमा से आपके पीएलए का रॉबर्ट बेक, आप जाइए जाने के बाद यूट्यूब में सुनिए, रॉबर्ट बेक का बेहतरीन इंटरव्यू है, उसका नाम है रॉबर्ट बेक जो एक्स सीएए का ऑफिसर है, उसने साफ कहा कि वी शुड अक्नॉलेज ईरान एज ए सुपर पावर, 70 मिलियन पॉपुलेशन एंड दे हैव डैम पावर, डैम रीजन उसकी जुमले है, वो कहता है कि सो मच पावर दे बिलीव ऑन देयर सुपीरियरिटी, वी कैन नॉट अटैक ईरान, वी कैन नॉट अटैक ईरान, अब इसके मुकाबले में वी कैन नॉट ईरान तो बैठने वाला नहीं है जालिम, तो जालिम तो कोशिश करेगा कि आखिरी वक्त तक किस तरह से दुश्मनों से मुलाकात करके इस मजहब को इस दीन को जो आगे बढ़ रहा है उसको कुचला जाए। तो आगे करबला नजर आ रही है, अगर हम बेदार नहीं हुए अलीम बिजालमीन के मजहब न बने तो हमारी जिम्मेदारी क्या है उसका समझना बहुत लाजमी है। तो ये मजालिस न सिर्फ क्रिया करने के लिए नहीं कि वो क्या हुआ, बल्कि जालिम से और जालिम हुआ यजीद हुआ, लेकुल फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए एक मूसा, तुम्हारा फिरौन को भी जानना है मूसा सवार कर। उम्मीद है कि हम लोग बस आंखें खोलेंगे और जाने की कोशिश करेंगे आजकल के हालात क्या है, और ऐसे आसान है मुद्दा, क्योंकि 200 साल की ईरान के अगर दो शॉर्ट अगर हम लें 200 ईयर की हिस्ट्री में ईरान में किसी कंट्री ने हमला नहीं किया, छोड़ दीजिए अभी तो इंकलाब ईरान तो 30 साल पहले आया, उससे पहले भी ईरान ने किसी कंट्री ने इन्वेड नहीं किया, 50 ईयर्स के अंदर अमेरिका ने 50 कंट्रीज को इन्वेड कर दिया, और जो जुल्म आजाद में हुआ है जो तारीख में नहीं हुआ है, 1.2 मिलियन फुजाइल इंसानों को मार दिया गया, मिलियन सब बेवाएं, मिलियन सब यतीम और मिलियन सब घरों को बर्बाद कर दिया, और सारे मुसलमान देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसे मौके पर गैर मगरूब अलैहि वलद्दालिम कहकर जबान से खामोश हो जाना नहीं है, बल्कि अलीम बिज़्ज़ालिमीन के मरहर बनना है। दुश्मन क्या कर रहा है, अगर जब मसल बना तो क्या करें, कल सुबह जाइए तो आप घबराए नहीं, घबराए तो हर शख्स समान होंगे, छोटा सा ही नहीं, एम्बेसी ऑफ सोवियत, हमारा कैलेंडर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दीज आर द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम होमा, दीज आर द फॉलोअर्स ऑफ, दुनिया में आज 1.6 बिलियन मुस्लिम है, 20% अगर मान लिया जाए, उससे ज्यादा 20% भी मान लिया जाए, नियरली 400 बिलियन शिया मौजूद है, 400 मिलियन शिया मौजूद है, उनको हर्ट कर रहे हो। पर क्या ईरानों का कानून यह कहता है कि हर इंसान को अपने मजहब पर चलने का, तो हमें क्यों नहीं है? तो आज हम हमारा एहतजाज सिर्फ आंसू के जरिए करेंगे, हमारा एहतजाज हमारी एहतजाज और हमारी एहतजाज किरदार के जरिए से भी बनना है, हमारी जबान भी हमारी जबान एहतियात बने और फिर हमारा किरदार भी एहतजाज बने और मुकाबले में खड़े रहे किसी भी आप और हम मानते हैं किसी ग्रुप हो सकते हैं जिन्होंने इमाम हुसैन पर हमला किया उन पर लाना, जिन्होंने कासू किया उन पर लाना, और जिन्होंने देखा खामोश हो गए। इमाम सादिक का कौल है कि अगर तुम मगरिब में रहते हो तुम्हारा, अगर तुमने सुना है कि मशरिक में कोई कत्ल हुआ है, तुमने रिएक्ट नहीं किया, तुम उस कत्ल में शरीक हो। मान कतल नफ्स पर मैं कतल नफ्स, जिसने एक इंसान को कत्ल किया कोई कहने वाला है। अजीब तालिबान जो आज अपने आप को बड़ा इस्लाम का झंडा दिए हुए, कोई एक यहूदी को मारा है बता दीजिए, कोई एक मुकाबला किया है यहूदी किसी एक जुर्म में, तो जब पहले से नहीं हमला किया तो आज क्या करेंगे? तो मुकाबला वही करते हैं जिन्होंने खैबर में मुकाबला किया था, और वही करते हैं जो खैबर वाले हैं। तो जरूरत है इस बात की कि हम लोग अपनी नमाजों में जब इन जुमलों को अदा करें तो खुदा से हकीकत में तौर पर यह मांगे पर वजह हमें इतनी सलाहियत दे कि मुनइम जो नेमतें तुझे दी हैं, जिनको दी हैं उनकी मारफत भी हासिल हो जाए, मगज़ूब और ज़ालिम कौन है ताकि उनको पहचान सकें और तेरे सिरात पर मासूम है, जो आज घबरान आज हमको रास्ते पर फंसाने वाले कौन है उनको पहचाने, और अच्छी तरह से पहचानने के बाद उनसे दूर रहने की कोशिश करें, मुकाबला ना करते तो कम से कम अपने आप को, अगर यह हो सकता तो हमारी कामयाबी है। और इसीलिए आज हम बैठे हुए हैं उस बीवी के मजार को, उस घर वालों के मजार को, ये इन मसायब के लिए बहुत काफी है कि हम लोग दो चार जुमलों को गौर करें। मैंने पहली मरतबा मैंने कई मरतबा तब तरह हमेशा करता हूँ कि ज्यारत को जब पहले जाता है इंसान की कैसे नहीं होगा ना, अब खुदा इंशाल्लाह ज्यारत नसीब करे जाए इंशाल्लाह, और ज्यारत हमारे लिए बड़ा शरफ है, बल्कि हदीस में है कि अगर मारफत इमाम के साथ ज्यारत हो तो 70 हज के मुकाबले, इमाम रजा की ज्यारत के लिए 700 हज के मुकाबले में इमाम रजा की ज्यारत कब मारफत नक्शो नया निगार दायर में जिंदगी न कर, अच्छा होगा ना मारफत इमाम, अब सलाम जब कहें तो हकीकत में इमाम को सामने माने। तो 1925 में जो जुल्म हुआ ये जुल्म हमारे रिएक्ट न करने की वजह से, इमाम से आज कादम करियम पर हमला हुआ, और जो होना चाहिए था दुनिया भर में नहीं, जैसे कि होना चाहिए तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो जब ये हो रहा है अगला जवाब अमली का जुमला है, जालिम ज्यादा नहीं है मजलूम ज्यादा है, तो जब मजलूम ज्यादा है तो मजलूम अगर रियाज करे तो जालिम कहां करे जाएगा, हमारा रियाज न करना इस बात की दलील है कि जालिम अपना काम करता। तो हम पहली मतलब ज्यारत को गए थे तो तमन्ना थी शफा के शफा के साथ, जन्नत उल बकरी से खाक लेकर हमारे पुराना शोकाना है, हमारे सालाना बचने वाला काम सभी चाहते थे कि तबर्रुका ना रखा हो, लेकिन जब मैं 78 की बात बता रहा हूँ, मैं गेट पर गया तो एक आलिम वहाँ पर ईरानी आलिम सलाम कर रहा था, मम्मी जियारत कीजिए, लेकिन अब यहाँ से हार पहुंचा, जियारत कीजिए यहाँ से हाथ मत उठाइए, जुमला था उसका और मेरी काम मेरे काम पड़े हुए, मैं तो जियारत करता था, मैं जाता था इसे हाथ में उठाऊ, दूसरा जुमला था अब यहाँ पर हाथ के अलावा कुछ था, अब इन कब्रों में कब्रों पर सिवाय खाद के कुछ बाकी नहीं है, हकीकत यही है, जाइए खुदा इंशाल्लाह ज़ियारत नसीब करिए, अरे आपको इधर रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, और कुछ ही कदमों के बाद देखते हैं आपके इमाम, चार इमाम हैं जो बेसाया कब्र पड़ी हुई हैं, मजलूमियत की गवाह है, और उसके बाद नजब जाइए, रौजा है ज़ियारत, ज़ायरीन है ज़ियारत करने वाले हैं, कर्बला जाइए ज़ियारत कीजिए, और यकीन रोएंगे आप लेकिन दिल मुतमईन होगा, और जब आ जाइए इमाम रजा के पास, बड़ा दरबार है, 24 घंटे हरम खुला हुआ है, मौला की चाहने वाले जा रहे हैं सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा, जब यहाँ ज़ियारत के बाद मैंने इमाम रजा की ज़ियारत पढ़ी, मौला यकीन आप दूर हैं, लेकिन जो गुरबत मैंने जन्नतुल बकी में देखी है, जो मैंने गुरबत जन्नतुल बकी में देखी है, वो गुरबत कहीं और नहीं देखी, शायद यही वजह है कि रिवायत काजी और मौलाए कायनात के लिए जुमला है, मौलाए कायनात की जियारत का टुकड़ा है, अस्सलाम अलैका या अकबर सादरीन, सबसे ज्यादा सब्र करने वाले इमाम हुसैन के लिए जुमला नहीं है, ये जुमला जियारत का इमाम मौलाए कायनात के लिए, अस्सलाम अलैका या अकबर सादरीन, सबसे ज्यादा सब्र करने वाले, मैं गौर किया करता था क्यों, इसलिए कि सामने फातह खैबर था, रहने के बावजूद घर चला और बीवी के पहलू में दरवाजा गिरा, मगर मेरा मौला कुछ नहीं कर सका, अस्सलाम अलैका या अकबर सागरीन, बाद में और एक जुमला कह दूं, रिवायतें हैं कि इरादा करने वालों ने चाहा के बीवी की कब्र को खोदे और फिर से नमाज पढ़ के दफन करे, मौला ए कायनात कब्र पर बैठ गए, मुंह से कफ जारी था, तारीख कहती जैसे अली को लोगों ने देखा, आई हदीस रसूल याद आए, एक दिन वो आएगा जबकि अली मिट्टी के घोड़े पर सवार होगा, मुंह से उसके कफ जारी होगा, अगर मशरिक और मगरिब की फौजें उससे मुकाबला करेंगी तो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगी, जब वो आदमी होता है तो इसी तरह से बैठ कर ललकारता है, कौन है आ जाए यहाँ पर, लेकिन मौला नजदीक गिरा रहे हैं, अरे मौला की रूह तड़प रही है, या मौला इमाम ज़माना परवर देखो सल्लल्लाहु अलैहि وعلى الأرواح التي خلت بثنائه وأنا حجر أهلك السلام عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ما تنام الحسين